ってもらってた気がするんだが。グループのブレイク。それだ、苦しれてる。いや、かび、苦しれてる、かび、苦しきばじる。おい、ビアテさん、わさんくるくめあじゃてる。あが、こいび、ビアテさんくるくちゃったへ。わ、ビアテさんが、みるたへ。と、苦しさまったわじゃて。क्योंकि व्यर्थ संग व्यर्थ संकल्प बोझ है और खुशी हल्की चीज है इसलिए देखो जब खुश होते हो तो नाचते हो जो हल्का होगा वो खुशी में नाचेगा शरीर कितना भी भारी हो लेकिन मन हल्का होगा तो भी नाचेगा मन भारी होगा तो हल्का भी नाचेगा नहीं तो खुशी है हल्कापन और व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ संग है भारी बोझ बोझ सदा नीचे ले आता है और हल्की चीज सदा ऊंची जाती है तो खुश रहने का सहज साधन है सदा हल्के रहो शुद्ध संकल्प हल्के है और व्यर्थ संकल्प भारी जब भी किसके व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो क्या अनुभव करते हैं माथा भारी हो जाता है बोझ है तब तो माथा भारी करते हैं ना तो सदा बाप के संग में रहना और सदा बाप के दिए हुए शुद्ध संकल्पों में रहना यह रोज की मुरली रोज के लिए शुद्ध संकल्प है तो कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा मिले हुए हैं जब कोई अच्छी चीज व बढ़िया चीज मिल जाती है तो हल्की चीज को क्या करेंगे खत्म कर देंगे तो बाबा हमेशा खुशी के लिए कहते हैं हमेशा कहते हैं कि सदा खुश रहो खुशी के बजाय कभी व्यर्थ संग व संकल्प तो नहीं आ जाते अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प चलता है व व्यर्थ संकल्प मिलता है तो खुशी समाप्त हो जाती है इसके लिए मन को निरंतर शुद्ध संकल्पों से भर देना जब मन खाली होगा तो वहां क्या होता है
कुछ ना कुछ बैठ तो दिख जाएंगे
भूत कहाँ निवास करते
हैं भूत बंगला
निर्जन स्थान भूत बंगला कोई खाली मकान कोई खंडर कोई वीरानी हो ऐसी जगह पर भूतों का निवास है कोई ऐसी कोई कोठी तो जहां पर भी खाली है वहां पर भूत आते हैं कल बाबा ने कहा था भूतों को भगाओ तो भूतों को भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा भर के रखना पड़ेगा मन को अगर मन खाली है जो भी खाली स्थान है निर्जन स्थान है खंडहर है ऐसी कोई कोठी है प्रासाद है महल है कमरा है मकान है वहां पर भूत प्रवेश करते हैं क्यों ऐसा उनको पसंद है खाली जगह जहां उनका राज हो
ताला बंद है फिर भी वो रहते
हाँ अंदर तो ये भूत क्या है मनोविकार ही भूत है
ताला ठीक से लगा नहीं
तो ये मन ही वो कमरा है ये मन ही वो बंगला है अगर इस घर में इस कमरे में इस कोठी में यदि शुद्ध संकल्प है तो वहां कोई भी व्यर्थ आ नहीं सकता व्यर्थ रूपी भूत साधारण रूपी भूत विकार रूपी भूत निगेटिव संकल्प रूपी भूत कोई नकारात्मक संकल्प नहीं आ सकता क्योंकि ये सारे संकल्प अनुपयोगी है अनियंत्रित है आत्मा को गिराने वाले हम क्या है हम जो हमारे संकल्प है वही हम है जैसे हमारे संकल्प वही हम क्योंकि व्यर्थ संग व व्यर्थ संकल्प बोझ और खुशी हल्की चीज है जिसके मन में जितने शुद्ध संकल्प है श्रेष्ठ संकल्प है महान संकल्प है उतनी ही स्थिति महान उतनी ही स्थिति इसलिए देखो जब खुश होते हो तो नाचते हो स्थूल नाचने की भी बात नहीं है सूक्ष्म नाचना जो हल्का होगा वो खुशी में नाचता रहे बाबा यहां स्थूल की भी कह रहे हैं शरीर कितना भी भारी हो लेकिन मन हल्का होगा तो भी नाचेगा गाएगा नाचेगा। मन भारी होगा तो हल्का भी नाचेगा नहीं,
नचाएगा।
अगर मन भारी है तो दुखी रहेगा, चाहे सुख सुविधाएं भी मिल जाए तो भी दुखी। यहां से नीचे जा रहे एसी कार में बैठकर, पर मन यदि उदास है तो पसीना आएगा, उसमें भी दुख की अनुभूति होगी। अगर बहुत खुशी में है, आनंद आनंद अवस्था है, आनंदमय अवस्था है, तो परिस्थितियां कैसी भी हो, अप्राप्ति वाली परिस्थितियां है, सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही है, बीमार है, हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई नहीं है, पैसे नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बाबा के ऊपर विश्वास और बढ़ेगा और निश्चय ज्यादा होगा और शक्तिशाली स्थिति होगी, और इसके विरोध में दुखी भी हो सकता है व्यक्ति, संपूर्ण निराश हो सकता है। तो खुशी है हल्कापन और व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संकल्प भारी बोझ। अपनी चेकिंग करना है कि कौन कौन से संकल्प मुझे भारी करते हैं, कौन कौन से संकल्प एक बोझ के रूप में मेरे ऊपर है, ऐसी कौन कौन सी बातें जो अतीत में हुई है जिससे अभी तक मैं छूटा नहीं हूं, जिसका पश्चाताप अभी तक हो रहा है, ऐसी कौन कौन सी भविष्य की चिंता है, मेरा क्या होगा, मैं बीमार पड़ा तो क्या होगा, कोई देखने आएगा कि नहीं आएगा, हॉस्पिटल कोई ले जाएगा नहीं ले जाएगा। चिमन भाई के ऊपर सबको विश्वास है, जिसका कोई नहीं है उसको चिमन भाई तो जरूर देखने आएंगे, ले जाएंगे,
पूरा पहुंचा देंगे वो।
तो बोझ सदा नीचे ले आता है, हल्की चीज सदा ऊंची जाती है। शुद्ध संकल्प हल्के, महान संकल्प, हमें शुद्ध दुनिया में चलना है ना, तो शुद्ध बनना है, शुद्ध दुनिया अगले वाले संडे में है मुरली, शुद्ध दुनिया में चलना है। तो होली हंस बनना है तो कहीं जाकर तुमको हिज होलीनेस करके संबोधित करेंगे। तो खुश रहने का सहज साधन है सदा हल्के रहो। हमारा जो कर्म है दिन भर का उसमें हमारी स्थिति हल्की, कोई भी चीज भारी ना करे। शुद्ध संकल्प हल्के और व्यर्थ संकल्प भारी। स्थिति भारी हो रही है इसका अर्थ ही भूतों ने प्रवेश कर लिया है अंदर, उस समय ज्ञान को बढ़ाना है। जब भी किसके व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, माथा भारी हो जाता है, बोझ है तभी तो माथा भारी करता है। तो सदा बाप के संग में रहना और सदा बाप के दिए हुए शुद्ध संकल्पों में रहना, यह रोज की मुरली रोज के लिए क्या है, शुद्ध संकल्प है, खुराक है, भोजन है। तो ये रोज की मुरली रोज के लिए शुद्ध संकल्प है। अगर कोई किताब बहुत अच्छी है तो किसी को बहुत पसंद है, कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार, दो बार, पांच बार, ज्यादा से ज्यादा 10 बार। किसी को कोई फिल्म अच्छी लगती है तो कितनी बार देख सकते, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार। पर मुरली ऐसी चीज है कि उसको जितनी बार भी पढ़ो उसमें नई नई बातें पता चलती, नए नए सत्य हमको पता चलते, उसमें कुछ नए नए राज भरे हैं। एक बार पढ़ने से नहीं होता है कोई भी चीज, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, जितना उसको बार बार पढ़ोगे सुनोगे उसमें से नई बातें निकलती है। ऐसी कोई बात निकलती है कि जो हमको 10 साल में समझ में नहीं आई और एक दिन अचानक समझ में आ गई, 10 साल में किसी एक समस्या का हल पता नहीं चला हजारों बार मुरली सुनने के बाद भी, वो एक दिन अचानक पता चल जाती, जैसे कोई गांठ थी वो खुल जाती है। इसलिए बाबा ने कहा रोज की मुरली रोज के लिए शुद्ध संकल्प है, तो उसका बार बार अध्ययन करना, बार बार पढ़ना लिखना, कुछ कुछ चीजें याद करना। तो कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा मिले हुए अनगिनत। जब कोई अच्छी चीज व बढ़िया चीज मिल जाती है तो घटिया चीज को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। मुरली का रस कभी खत्म नहीं होता है, उसमें जो स्वाद है वो कभी खत्म नहीं होता है। पर हमारी उसमें उतनी रुचि हो। सारा दिन बुद्धि को बिजी रखने के लिए रोज सवेरे सवेरे बाप शुद्ध संकल्प देते, जहां शुद्ध होंगे वहां व्यर्थ नहीं होंगे। बुद्धि को खाली रखते हो इसलिए व्यर्थ आता है। बुद्धि को बिजी रखने के लिए क्या करेंगे? निरंतर ज्ञान का चिंतन, सदा ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहो। कुछ दिन पहले था निरंतर ज्ञान का मनन चिंतन। सारे दिन भर कौन सी हमारी दिनचर्या, कौन सा कर्म है जहां पर ज्ञान लुप्त हो जाता है, उसको ढूंढना है और उसमें ज्ञान भरना है। क्योंकि ज्ञान पता है, परंतु जब कोई कर्म कर रहे हैं उस समय वो भूल जाता है, बाद में याद आता है, उसी 10 मिनट में गलती होती है और उसके बाद में हमारे हाथ में रह जाता है पश्चाताप और भविष्य के लिए योजनाएं बस, और जो वर्तमान नष्ट हो गया वहां पर। बाबा ने हर चीज के लिए, हर परिस्थिति के लिए कुछ ना कुछ कहा हुआ है। अगर ये सारा ज्ञान होते हुए भी हमसे अगर गलती हो रही है, इसका मतलब अभी तक हमने ज्ञान को समझा नहीं है। अभी तक भी हम ये प्रतिज्ञा करना कि मैं कल से ये नहीं करूंगा, जैसे मैंने उस दिन कहा था, हम कभी ये प्रतिज्ञा नहीं करते कि आज से बाहर का खाना बंद करेंगे। करते हो ये प्रतिज्ञा रोज? क्यों नहीं करते? संपूर्ण समझ प्राप्त हो गई है, संपूर्ण समझ अर्थात ही संपूर्ण नियम हो गया है। वहां प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता नहीं, अभी बाबा के कमरे में बैठ के कि बाबा आज बाहर जिलेबी बहुत अच्छी बनी है पर मैं जाऊंगा नहीं,
मैं नहीं खाऊंगा
उधर। ये संकल्प कोई ब्राह्मण करता है? कोई भी ब्राह्मण जो बन गया उसने छोड़ ही दिया, उसको एकदम ही छोड़ दिया, टोटल कैंसल, रिजेक्ट, संकल्प ही नहीं है कोई, चाहे कितना भी अच्छा कुछ बन रहा हो,
दीवार से नहीं जाएगा।
वही वाली बात है। तो ये जो चीज है, जैसे वो वैसे फिर बाकी सारे नियम। कोई संकल्प करता है मैं आज से रोऊंगी नहीं, उसी दिन रोना आता है। रोना आया, गलती हुई, भूल हुई, इसका मतलब समझ ही नहीं है पूरी। संपूर्ण समझदारी, संपूर्ण नियम है, संपूर्ण प्रतिज्ञा है, संपूर्ण व्रत है। तो जब गलती हो रही है और पश्चाताप करना पड़ रहा है, पवित्रता के लिए 10 साल से हम बहुत कुछ कर रहे हैं, 10 साल से पवित्रता की हजारों चीजें कर ली, हजारों लेक्चर दे दिए, सुन लिए, उसके बाद में भी अगर पवित्रता पर चोट लग रही है, इसका मतलब अभी तक उसको समझा नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप इज समझ, समझो, क्योंकि जैसे वो समझ लिया और उसको संपूर्ण त्याग कर लिया, उसका बार बार संकल्प करने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। जब संपूर्ण ऋषि से त्याग किया जाता है, जैसे हम जोश में प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वही दिखाता है कि करने की संभावना है। रोने वाले हो इसके लिए संकल्प कर रहे हो कि नहीं रोएंगे, पता है खुद को कि नहीं रोने वाले है, फिर भी अपने ऊपर थोप रहे हो प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा फिर टूटती है, फिर आत्मग्लानी और अपराध बोध, और फिर वही कि हमने श्रीमद को तोड़ दिया, और आत्मा फिर निराश,
फिर प्रतिज्ञा,
फिर तोड़ना, फिर निराशा, फिर प्रतिज्ञा। ऐसे करते करते एक समय आते फिर सोचते अभी क्या प्रतिज्ञा करना, छोड़ो, क्या करना है पुरुषार्थ, कुछ होता तो कुछ नहीं। चार्ट लिखा, वही चार्ट, अमृत मिला, यस नो, परसेंट लिखा 10%, 20%, 50%, कुछ समय लिखा, छोड़ दिया, तो यही चलते रहते। तो इसलिए बाबा कहते बुद्धि को बिजी रखने के लिए रोज सवेरे सवेरे पाप शुद्ध संकल्प देते। तो अपने बुद्धि में ज्ञान का चिंतन चलता रहे, जहां शुद्ध होंगे वहां व्यर्थ नहीं होंगे। बुद्धि को खाली रखते हो इसके व्यर्थ आता है। यही सहज उपाय साधन है कि सदा शुद्ध संकल्पों से बुद्धि को बिजी रखो। खुश रहना है, खुश रहना है, ये तो सुना है, हजारों बार सुना है, कोई नई बात तो है नहीं। खुश रहने का संकल्प किया कि आज से सदा खुश रहेंगे, और उसी दिन दुखी, इसका मतलब उस खुश रहने की जो चीज है उसको समझा नहीं। सिर्फ यही याद नहीं रखना लेकिन सदा खुश रहना, यही सोचो कि ब्राह्मण खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे।
समझना तो साथी आता ही है समझ में।
समझने का बार बार प्रयत्न करना है, अमृत वेले प्रयत्न करना है, योग में जब बैठते हो कभी कभी वहां पर भी ज्ञान का चिंतन करना है। योग में केवल योग ही नहीं करते रहना है, योग में कभी कभी स्वमान का भी अभ्यास करना है। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मुझसे पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही है, यह भी योग ही है। ज्ञान का चिंतन करना, याद करने की कोशिश करना, किसी एक पॉइंट पर बुद्धि को रोक देना और उसका विस्तार करना वहां पर, क्योंकि वो एकाग्रता की अवस्था होती है। हम जिस अवस्था में ज्ञान चिंतन कर रहे हैं वो एकाग्रता की अवस्था नहीं है, इसके लिए उसकी गहराई में वो कैद है। ये जो सारा ज्ञान बाबा जो कह रहे हैं, एक एक शब्द लॉक्ड है, एक एक शब्द में, एक एक लाइन में, एक एक वाक्य में कुछ तो राज है, पर हम टच नहीं कर पा रहे उसको, क्योंकि वो कैद है, उसको खोलना पड़ेगा। हमारी बुद्धि भी लॉक्ड है, भटक रही है, भटकने वाली बुद्धि में ज्ञान समझ में नहीं आता। यही सोचो कि ब्राह्मण खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे, ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है ना, देवताओं से भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ये कई बार सुना है, सारी बातें नया कुछ भी नहीं है, परंतु इसको एक अलग रीति से पढ़ना है, अलग रीति से इसको एक नया आयाम देना है इसको। ब्राह्मणों की खुराक है खुशी, इसलिए गाते खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। अगर कोई सदा खुश रहता है तो पूछते हैं आपको क्या मिला, आप लौकिक जीवन से अलौकिक जीवन वाले हो गए, तो यह अलौकिकता ही झलक, अलौकिकता की झलक चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए। ऐसे नहीं मैं अंदर से तो खुश रहता हूं, बाहर से दिखाई नहीं देता है, हमारी तो गुप्त खुशी है। जैसे उदासी है, कोई कितना भी उदासी को छुपाने की कोशिश करे छिप नहीं सकते, पता ही चल जाएगा कि ये उदास है। वैसे खुशी भी वैसी चीज है, आंतरिक बहुत सुंदर स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति है, तो वो खुशी से व्यक्ति नाचेगा ही, चाहे बाहर अप्राप्ति हो। अंदर का बाहर अवश्य आता है, बाबा कह रहे हैं अंदर का बाहर अवश्य आता है। हमारे मन में किसी के प्रति बहुत घृणा है पर हम ऊपर से नहीं दिखाते, उसके बाद में आएगा। हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध भरा हुआ है, बहुत ज्यादा क्रोध, ऐसे कहते हैं कि 6 मिनट तक कोई संकल्प अगर मन में रहता है तो वातावरण में घूमना चालू हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति एक कमरे में बैठा और बहुत क्रोध है तो सारा कमरा क्रोध से भर जाएगा, वो कुछ नहीं कर रहा है, बैठा है केवल क्रोध के संकल्प कर, तो कमरे में वातावरण भर जाएगा वो कमरा। तो सदा चेक करो कि हमारा चेहरा और चलन अलौकिकता की झलक दिखाता है। अच्छा तो क्या कह रहे बाबा, सदा खुश रहने के लिए कह रहे, जो सदा खुश है वो सदा नाचता रहेगा, सदा गाता रहेगा, हल्का रहेगा। संकल्प हल्के है तो ही हल्की स्थिति है। अभी हल्के संकल्प कौन से है, शुद्ध संकल्प, सकारात्मक संकल्प। भाव कौन से, अपनेपन के भाव, आत्मिक भाव, शुभ भाव, कल्याण के भाव, स्नेह के भाव, सहयोग के भाव, दूसरों को आगे बढ़ाने के भाव, उमंग उत्साह के भाव, सेवा के भाव, निमित्त भाव, निर्माणता के भाव, ये सारे भाव। इसमें से कहीं पर भी मैं है, बाबा ने कहा है मैं को स्वमान में बदल दो और मेरे को तेरे में बदल दो। हर मैं को स्वमान में बदलो और हर मेरे को तेरे में बदलो। ऐसी अगर स्थिति है तो खुश है। तो खुशी के लिए सबसे मुख्य आधार है बाबा ने कहा शुद्ध संकल्प, और शुद्ध संकल्पों का खजाना है रोज की मुरली, रोज के लिए शुद्ध संकल्प है। इसके लिए जितना प्यार उससे होना चाहिए उतना नहीं है, पहले ये बात को स्वीकार करो। दूसरों को दिखाने के लिए सब कहते हैं हमारा बहुत प्यार है, हमारा ज्ञान में भी बहुत प्यार है, हम सदा खुश रहते हैं, अंदर से दुखी है, परंतु ये जो भीड़ है ना, ये भीड़ हमको चला रही है। हमारा व्यक्तित्व 2 हिस्सों में खंडित हुआ है, एक वो जो हम अंदर है, दूसरा वो जो हम दिखाना चाहते हैं। अंदर में भोग विलास की इच्छा है, बाहर से हम योगी है। हमारे पास एक डॉक्टर थी जिसको मतलब वो मुरली रोज जाती थी, तो मैंने हमने एक बार पूछा था उससे, हाँ बोल रहे किलो, वो क्या कहती थी कि क्या करो, या तो जाना ही पड़ेगा रोज, अगर नहीं जाएंगे यहाँ मुरली में तो लोग कहेंगे माया ने खा लिया इसको।
एक दिन खा लिया
तो एक दिन खा लिया, चिमन भाई को पता है कौन है तो एक दिन तो खा ही लिया। तो ये जो है क्यों जा रहे हैं, दिखावा क्यों योग कर रहे हैं, और लोग समझे कि हम योगी है। एक हमारा बाहरी स्वरूप है, एक आंतरिक स्वरूप है। एक वो है जब हम अकेले अपने कमरे में रहे, एक वो है जब हम संगठन में हैं। ऑटोमेटिक भीड़ हमको प्रभावित करना चालू कर देती है, जो भीड़ हम वो सब उसको दिखावे के लिए कर रहे। एक है हम अंतर में जो है वो, तो जो अंदर है वही बाहर हो। भीड़ को दिखाने के लिए हम कुछ ना करें, ऐसा सच्चा पुरुषार्थ हमारा ट्रांसपेरेंट। वो बहुत ऊंची स्थिति है, मॉब मेंटालिटी से ऊपर उठना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। हम योग कर रहे हैं, हमको झुटका आता है, सबसे पहली कौन सी नजर जाती है कि किसी ने देखा तो नहीं, बाबा का क्या हो रहा है और हमको बाबा ने क्या कहा वो नहीं, सबसे पहला किसी ने देखा तो नहीं, नहीं देखा तो निश्चिंत। हमारी एक दूसरी डॉक्टर थी, एक बार बाबा के कमरे में आ गई सुबह सुबह 2 बजे, फर्स्ट टाइम 2 बजे, और बाबा कमरा नहीं कुटिया में, तो पीछे 4-5 माते बैठी थी सोफा पर, तो योग करते करते उसे नींद आने लगी, इतनी नींद आने लगी, नींद आ गई, बीच में उठी तो देखा सीधा 3 बज रहे, 2 बजे आके बैठी, और जब आंख खुली कुटिया में तो देखा 3 बज रहे, तो एकदम से चिंता हो गई कि पीछे कुछ लोग बैठे हैं। पीछे मुड़ के देखा तो 5 माता है, 5 सो रही थी, तो फिर बहुत ही निश्चिंत हो गई कि कोई खतरा नहीं है, किसी ने देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं तो निश्चिंत बस चलो। अब बाबा का तो कुछ, बाबा का तो कभी भी बाबा ने देखा उसका कोई टेंशन नहीं, दूसरे देखना नहीं चाहिए बस, पीछे देखते ही इतना राहत मिलती थी, देखो ये भी सो रहे तो, तो हमारा पुरुषार्थ सच्चा हो, साफ हो, दिल से हो, थोपा हुआ ना हो, उसमें आडंबर ना हो, उसमें ढोंग ना हो, उसमें दिखावा ना हो, और हमारे मन में निरंतर शुद्ध संकल्प चलते रहे। कौन क्या कह रहा है किसी को दिखाने के लिए ना हो, आंतरिक हो, अंतरतम से निकला हुआ, प्राणों की गहराई से निकला हुआ, तो ये स्थिति खुश रहेगी। बाबा ने कहा बुद्धि को बिजी रखने के लिए
प्राण जड़ हो गए,
नए उसमें नई चेतना भरनी है, इसी ज्ञान को एक नए रूप से देखना है। ऐसे पढ़ो जैसे कोई छोटा बच्चा है और वो सागर के किनारे जाता है, तो उसको कितना आश्चर्य हर चीज का, देखो लहरें कैसी आ रही है, तितलियां कैसे उड़ रही है, आसमान में सूरज कहां से उग के आया है, ये तारे क्या है, उसको हर चीज का आश्चर्य, हर चीज का विस्मय है, हर चीज के बारे में सोच रहा है। उसी तरह आपकी जो अप्रोच है इस तरह से, ये क्या है, ये व्यर्थ क्या होता है, ये शुद्ध संकल्प क्या है, ये अशुद्ध संकल्प क्या है, ये मुरली क्या है, ये बाबा ये क्या कह रहा है, ऐसे समझो कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं, अभी जस्ट आज पहला दिन है इस ज्ञान को समझने का, आज इसको समझे, ये खुशी है क्या, क्यों कह रहा है खुश होने के लिए, क्या क्या उसने कह दिया मतलब खुश हो जाए अच्छी चीज है, नहीं हम तो दुखी रहेंगे। मनुष्य का एक स्वभाव है उसको दुख से बड़ा लगाव है, बहुत अच्छा लगता है उसको दुख, कष्ट से बड़ी प्रीत है उसको, जब तक वो कष्ट नहीं होता है उसको उसको चैन नहीं आता है, कोई ना कोई उसको दुख दे तो तुरंत जैसे कि वो राह देख रहा है कौन कब मुझे दुख दे, 10 दिन से किसी ने कोई दुख नहीं दिया तो चुप है, कोई चर्चा नहीं है कि मैं बहुत खुश हूं, इसकी कोई अभिव्यक्ति नहीं है, जैसे किसी ने कुछ बोला और उसने दुख दिया, जैसे हम ताक में बैठे थे कब वो दुख दे और कब मैं उस दुख को पकड़ू और उसके बारे में दिन भर सोचता रहू, रात भर सोचता रहू और दुखी हो जाऊं, ये कैसी एक विक्षिप्तता है कि जो व्यक्ति को दुख ही बहुत प्रिय है, अंदर से वो दिखाना चाहता है मैं खुश होना चाहता हूं पर प्रीत दुख से
पुराना सांस,
ये सब इसको भी बदलना है, ये भी एक पागलपन है। प्रीत सुख से करनी है, दुख से नहीं, अटैचमेंट टू सॉरो, यू आर वेटिंग एज इफ कि कौन दुख दे और मैं उसको जैसे ग्रहण कर लू पूरा ही और दिन रात सोचू उसके बारे में और अपने आप को और नीचे गिरा
चिंतन चलता है।
जैसे स्वास्थ्य के लिए इतनी जागृत तक नहीं है, रोग के लिए जागृत आ जाता है। अब जब हम स्वस्थ है तो कोई ज्यादा सोच नहीं चल रहा, जब रोगी हो रहे सर दर्द हो रहा है पेट दर्द हो रहा है तो दिन रात सोच रहे उसके बारे में, फिर सब जगह देह ही देह दिख रही है। तो ये भी वैसा ही है, दुख से ज्यादा प्रीत है। तो मन को शुद्ध संकल्पों से भर लो तो मन हल्का होगा और सदा खुश रहे। अच्छा ओम शांति।
इसको ही बेहद का वैराग्य कहेंगे ना।